कायरा विनाया को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। उसने वहां खड़े सर्वेंट को आंखों से कुछ इशारा किया तो वो सर झुकाते हुए वहां से चला गया। कायरव ने इनाया को बिठाया और खुद उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गया। इनाया इतनी देर से एकटक उसे ही देखे जा रही थी। कायरव पहले सब जानकर भी नज़रअंदाज करता रहा, पर जब इनाया की निगाहें यूं ही उस पर ठहरी रहीं तो हार कर उसने सर घुमाया और बौहें उछालते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, तो मुझे देखने में इतनी खोई हुई हो कि अपनी पलकें तक नहीं झपका रही। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो तुम?
तुमने मेरे लिए वो क्यों किया? इनाया ने खोए स्वर में सवाल किया। कायरव जरा उलझा, क्या किया मैंने? वो मिस मल्होत्रा जब मेरे तरफ आ रही थी तो तुम किसी मजबूत शील जैसे उसके और मेरे बीच आकर खड़े हो गए थे। मैं तो ब्लैंक थी, उसके अचानक अटैक करने से घबरा गई थी, पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, उसे मेरे तक नहीं आने दिया। उसने मेरी इंसल्ट की तो उससे लड़े, अपनी मॉम के भी अगेंस्ट चले गए। उसकी फैमिली और अपनी फैमिली के रिलेशन तक खराब होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी इज्जत के लिए आवाज़ उठाई, मुझे रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश की, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। फिर तुमने क्यों किया? इनाया जैसे ही चुप हुई, कायरव ने एकदम से उसकी चेयर को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से उसे देखने लगी। हम मैरिड है, तुम वाइफ हो मेरी। अगर तुम्हारे लिए मैं ये सब नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं तुम्हें इस घर में लाया हूं ना, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर मेरे रहते कोई भी आकर मेरी वाइफ की इंसाइट कर जाए, उसे हर्ट करे, तो मेरे होने का क्या फ़ायदा? इनाया एक बार फिर अपलक उसे देखने लगी। कायरव उसके ज़रा करीब आया और उसकी हथेली इनाया के गाल पर आकर ठहरी। मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखना, अगर मैं हूं तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, तब तुम्हें ये काम खुद करना है। तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारी पास्ट लाइफ जैसी भी रही हो, किसी को कोई राइट नहीं उस पर कॉमेंट करे या उसके ज़रिए तुम्हें ह्यूमिलिएट करे। तुम अब मेरी वाइफ हो, मिसेज इनाया कायरव रायचंद हो। तुम्हारा एक ऑरा होना चाहिए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी इंसल्ट कर जाए। तुम अब हर जगह मेरे नाम से जानी जाओगी। तुम्हारी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है और तुम किसी को भी मेरी इंसल्ट नहीं करने दोगी। तुम्हें किसी से भी डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई भी कुछ भी गलत कहता है तो उसी टाइम जवाब दो, वो भी ऐसे कि वो दोबारा कुछ कहने की हिम्मत न कर सके। तुम्हें अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। याद रखना है कि तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा है। अब तुम्हारी एक रेप्यूटेशन है जिसे तुम्हें किसी को भी हार्म नहीं करने देना। अंडरस्टैंड? इनाया ने झट से सर हिला दिया। इतने में सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। कायरव और इनाया एक दूसरे से दूर होकर बैठ गए। कायरव तो शांति से ब्रेकफास्ट कर रहा था। इनाया खाना खाते हुए जो हुआ और कायरव ने जो कहा, उन सबके बारे में सोच रही थी। मेरे सगे बाप ने कभी मेरी इंसल्ट करने से पहले एक बार नहीं सोचा। उनके सामने उनकी बीवी मुझे गालियाँ देती थी, ताने मारती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनको कुछ नहीं कहा। मुझे प्रोटेक्ट करना उनका फ़र्ज़ था, पर वो कभी बाबा का कोई फ़र्ज़ नहीं निभा सके। और एक तुम हो जिससे मेरा रिश्ता सिर्फ एक डील है, फिर भी तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मानव के बाद एक तुम हो जिसने मेरे लिए आवाज़ उठाई है, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। कायरव ने आज जो किया, कहीं ना कहीं वो इनाया के दिल को छू गया। एक बार फिर उसकी नज़रें कायरव की तरफ उठीं और हल्की मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। दोनों नाश्ता कर ही रहे थे जब मिसेज रायचंद वहां आ गईं। कायरव ने उन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया। इनाया कभी उसे देखती तो कभी मिसेज रायचंद को, जिनकी नज़रें कायरव पर ही टिकी थीं। कायरव ने शांति से अपना नाश्ता किया, फिर उठकर खड़ा हो गया। इनाया भी उसके साथ ही उठ गई। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, टाइम पर लंच कर लेना। मेरी एब्सेंस में कोई भी अगर कुछ भी कहे या तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे तो मुझे कॉल करके बताना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कायरव ने इनाया को गले से लगाकर बाय किया और उसके सर को चूम लिया। इनाया ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उसे बाय किया और फिर एक नज़र मिसेज रायचंद को देखने के बाद अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद ड्राइवर उसका सामान लेकर आ गया, जो सीधे उसके रूम में पहुंचाया गया। इनाया ने शावर लिया, ब्रेकफास्ट कर चुकी थी तो आराम से बेड पर पसर गई। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर नॉक हो गया। इनाया ने जिराफ जैसे अपनी गर्दन घुमाई, वहां एक सर्वेंट खड़ी थी। क्या हुआ? मैडम, आपको बड़ी मैडम ने बुलाया है। मिसेस रायचंद ने मुझे बुलाया है। इनाया की आंखें हैरानी से फैल गईं। यस मैडम, उन्होंने आपको जल्दी नीचे आने कहा है। इनाया को अब भी विश्वास नहीं हुआ, पर उसने खुद को संभाला और सर हिला दिया। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। सर्वेंट के जाने के बाद इनाया उठकर बैठ गई और माथे पर बल डाले कन्फ्यूज सी खुद में बड़बड़ाने लगी। अब मिसेज रायचंद मुझे क्यों बुला रही हैं? उनके सुबह के बिहेवियर से तो मुझे यही लग रहा है कि वो मुझे पसंद तो नहीं करती और ना ही इस रिश्ते से खुश हैं। कहीं जैसे ड्रामास में दिखाते हैं कि जब रिच फैमिली का लड़का किसी पुअर लड़की से प्यार करता है तो उसकी मदर उस लड़की को डरा धमका कर, पैसों का लालच देकर उसे अपने बेटे से दूर रहने को कहती है, वैसे ही मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ तो नहीं करने वाली। कायरव के सामने तो उनकी चली नहीं, इसलिए उसकी एब्सेंस में मुझे बुला रही हैं। लगता है वो मुझे वीक टारगेट समझ रही हैं। कोई बात, आज मैं भी उन्हें दिखा दूंगी कि इनाया देशमुख कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं। किससे कैसे निपटना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। इनाया ने खुद पर इतराते हुए अपने आगे आते बालों को झटका, शातिर अंदाज में मुस्कुराई और स्लीपर पैर में फंसाते हुए रूम से बाहर निकल गई। इनाया सीढ़ियों से नीचे उतरी, सामने ही ड्राइंग रूम में लगे सोफे पर मिसेज रायचंद पूरे गुरूर के साथ बैठी हुई थी। घर में भी उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जो उनके स्टेटस को दिखा रहे थे। कपड़े सिंपल थे पर चीख चीख कर अपनी कीमत बता रहे थे। उनका ड्रेसिंग सेंस देखकर इनाया भी खुद को इम्प्रेस होने से रोक नहीं सकी। इनाया मुस्कुराते हुए उनके पास आ गई। आपने मुझे बुलाया? मिसेज रायचंद ने उसे ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से घूरा। इनाया ने ढीली सी टी शर्ट, नीचे से प्लाजो पहना हुआ था। कपड़े पुराने थे और उसके अपने थे। बालों को यूं ही बेतरतीबी से लपेटकर जुड़े में बांधा हुआ था। बिल्कुल सिंपल थी, ना कोई मेकअप ना कोई एक्सेसरी, बस गले में मंगलसूत्र लटक रहा था और बालों के बीच से हल्का सिंदूर झांक रहा था। पैरों में कायरव की स्लिपर्स थीं जो उसके छोटे से पैरों के हिसाब से काफी बड़ी थीं। बिखरी बिखरी सी हालत में भी वो लग बहुत क्यूट रही थी। उसकी आंखें सितारों सी चमक रही थीं, होठों पर मीठी सी मुस्कान बिखरी थी। इनाया को घूरते हुए मिसेज रायचंद ने बेरुखी से कहा, ये क्या पहना हुआ है तुमने? हमारे घर के सर्वेंट भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तुमसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, खुद को प्रेजेंटेबल बनाकर रखते हैं, और तुम इस घर की बहू होकर ऐसे पुराने सस्ते कपड़े पहनकर यूं ही उठकर हमारे सामने आ गई? क्या सोचेंगे वो हमारे परिवार के बारे में? अपनी इमेज की परवाह न सही, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखो। मिसेज रायचंद के कपड़े, शब्द और ताने सुनकर इनाया पहले तो आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखती रही, फिर उसने सर झुकाकर खुद को देखा। सॉरी सासू माँ, वो एक्चुअली ये मेरे कपड़े हैं जो काफी पुराने हैं, मैंने उन्हें अपनी चौल की लोकल मार्केट से खरीदा था। कपड़े पुराने हैं तो रंग थोड़ा फीका पड़ गया है, लेकिन अभी खराब नहीं हुए, तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ।
मैं कल ही यहाँ आई ना, तो यहाँ अभी मेरे कपड़े नहीं हैं। कायरव ने मंगवाए थे लेकिन गलती से यही कपड़े आ गए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे इन्हें ही पहनना पड़ा। कायरव ने कहा था कि शाम तक मेरे जरूरत की सारी चीजें यहाँ आ जाएंगे, फिर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इनाया एक बार फिर मुस्कुराई। अगले ही पल मिसेज रायचंद की कड़क तल्ख आवाज़ वहां गूंजी और इनाया के मुस्कुराते लब सिमट गए। टू बी कंटिन्यूड।